天然だとなくないかって。ये जितनी चीजें हैं ये कोई खाली रस्मी कोई प्रोग्राम नहीं है कि जैसे दुनिया की तंजीमों के सालाना प्रोग्राम होते हैं ऐसे इस मुबारक मेहनत वालों का भी एक प्रोग्राम सालाना हो गया कि ये बात नहीं है बल्कि इन इज्तिमात के जरिए से ईमान वालों को एक बहुत बड़ी बात की तरफ मुतवज्जह करना मकसद होता है और वो ऐसी चीजें हैं कि जिसके बगैर चारे कार नहीं हर ईमान वाले के लिए वो चीजें जरूरी है वो चीज ऐसी है कि उसको समझने से और उसके पूरा करने से अल्लाह पाक उसके जीने को अच्छा करते हैं और जब ये ईमान वाला दुनिया से रुखसत होगा तो अल्लाह उसके मरने को अच्छा करेंगे और खुदा न करे अगर वो बात न समझी जाए तो फिर न तो ईमान वाले का जीना अच्छा हो सकता है न उसका मरना अच्छा होगा वो बात क्या है तो वो बात जो दुनिया में नबियों ने इंसानों को समझाई है हमें भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से वो बातें पहुंची है लेकिन चूंकि ये दुनिया गफलत की जगह है यहां आदमी भूल जाता है या गफलत में आ जाता है और गफलत में आकर जो उसके मुतालिक बातें कही गई सुनने और समझने की बातों की जो बात हुई है उससे लाओबालीपन बरतता है नतीजे में इसका जीना मुश्किलात से भर जाता है कि जितने भी दुनिया में मसाइल हैं जिनके भी मसाइल हैं और जितने भी मसाइल हैं ये सारे के सारे मसाइल के मुताबिक अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि लोगों से ये बात कहो कि अगर तुम्हारे कोई मसाइल पहुंचे हैं तो ये तुम्हारे हाथों के करतूत हैं ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وہ کرتوت کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے سے متعلق جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے یا نہ کرنے کی چیزیں وہ کرنے لگتا ہے جیسے نہ کرنے کی چیزیں بری بات ہے ایسے کرنے کی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی بری بات ہے न करने की चीजों को करने को तो सब लोग बुरा समझते हैं लेकिन करने की चीजों को नहीं करना उसको बुरा समझने वाले कम हैं हम सबको अल्लाह पाक ने कुछ जिम्मेदारियों के साथ पैदा किया है और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो उन चीजों के साथ जिंदगी गुजारेगा उसी का जीना हम अच्छा करेंगे इसका मफहूम मुखालिफ यह होगा कि जिसकी जिंदगी में यह नहीं होगा उसका जीना खराब हो जाएगा कि इस दुनिया में हम और गैर ईमान वाले बराबर नहीं हैं कि ईमान वाला और कौमों की तरह उनको देखा देखे जिंदगी जी ले उनकी तरह जी ले कहीं बराबर नहीं है कि अल्लाह पाक ने उन लोगों के लिए तो इस दुनिया को जन्नत बनाया है वो अपनी जी की चाहतों पर और अपनी जी चाहियों पर अमल कर ले निभ जाएगा लेकिन हम ईमान वालों के लिए ही अल्लाह ने इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाया है हमारी जन्नत मरने के बाद है अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुम्हें तो इम्तिहान के लिए पैदा किया है खलक अल मौत वल हयात लियबलुवकुम हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया था कि हम देखें कि कौन क्या करके आ रहा है कि हम सबको अल्लाह पाक इस दुनिया में परख रहे हैं और असल जो हमारा जीना है वो तो मरने के बाद का जीना है हमारी असल जिंदगी वो मौत के बाद की जिंदगी है जहां हमसे पहले जा चुके, हमारे बड़े हमसे पहले जा चुके और वो मनोमन मिट्टी के नीचे दफन है, जिनके घरों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके जमीनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हल नहीं है। हम और आप गौर करें कि हमारे जो बुजुर्ग चले गए, हमारे घरों के वडील, हमारे घरों के बड़े जो चले गए, उनकी कब्रों को कौन याद करता है, कौन इसले सवाब करता है। अक्सर लोग अपने दादा के घर में रहते हैं, अब्बा के भी नहीं, दादा के घर में रहते हैं, दादा की प्रॉपर्टी वापरते हैं। पोतरों से पूछना कि दादा की कब्र पर कब गए थे। आज से 100 साल के बाद इस मजमे में से एक भी बाकी नहीं होगा। हम जितने बैठे हैं, हम में से एक आदमी भी इस 100 साल के बाद बाकी नहीं होगा। शायद हमारे पोते हमें याद भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे। कितने लोग वो हैं इस मजमे में कि जिनको अपने परदादा का भी नाम याद नहीं होगा। दादा का तो किसी दर्जे में होता है, परदादा का तो शायद नाम भी याद नहीं होगा। उस वक्त हम भी अपने परपोतों के परदादे बन चुके होंगे और हमें याद करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए हदीस में आता है, समझदार वो है जो मौत को याद रखे और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करते हुए जिंदगी गुजारे। अलकय्यस मंदान नफ्सहु वामिल लिमा बादल मौत। और नादान वो है जो सिर्फ उम्मीदों पर अपने जीवन को गुजारे कि अभी बहुत दिन बाकी है करने के, अभी बहुत दिन बाकी है। वलआजिज मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह ला मानी। और उम्मीदों पर अपने दिन काट रहा है, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ नादान है। ये याद दहानी उसी की हो रही है कि ऐसा ना हो कि हमारे दिन भी इसी तरह तमन्नाओं से गुजर जाते हों, कि करने के वक्त पर करने की चीजें छूट जाती हो और जब करने की चीजें छूट जाती है तो आदमी गैर महसूस तरीके से न करने की चीजों में लग ही जाता है। हर आदमी को अल्लाह ने जान भी दी है, माल भी दिया है, किसी कोई कम कोई ज्यादा, और हर एक को सलाहियत दी है। ये सारी चीजें वो है जो आखिरत बनाने के लिए है। जब आखिरत बनाने वाली चीजों में इस्तेमाल नहीं होती तो फिर अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों में ये तीनों चीजें लगती है। जान भी लगती है, माल भी लगता है, आदमी की सलाहियतें भी लगती है। कई चीजों की फिक्र हम में से एक एक को आ जाए इसके लिए ये इज्तिमात होते हैं। तबलीग कोई पार्टी नहीं है, तबलीग जमात कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे की खैरखाही का काम है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीन का तारुफ करवाया कि हमारे दीन में क्या है, कि खैरखाही है। अद्दीन वन नसीहत। किसके लिए खैरखाही है, कि सारे तबकों के लिए, लिल्लाहि वले रसूलिही वले आम्मतिल मुस्लिमीन वले अइम्मतिहिम, का सारे तबकों के लिए खैरखाही है। अगर दीन में खैरखाही न होती तो कोई हमारे और आपके पास आता भी नहीं, हमें अपने हल पर छोड़ देता, किसको क्या पड़ी है। अभी जोनों की जमातें चलकर आई है आपके इज्तिमा की, टेंटों में उन्होंने कयाम किया तो क्या इनको किसी पागल कुत्ते ने काटा था? किसी पागल कुत्ते ने किसी को नहीं काटा, सब अपने घर के लाडले और सब अपने घर के शहजादे। लेकिन उन्हें बात समझाई गई कि ईमान वाला ईमान वाले का भाई है। हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करें जो अपने लिए पसंद करता है। पर कल कयामत के दिन अल्लाह के वहां पेश होना है, अल्लाह के नबी सलाम को चेहरा दिखाना है। कई चीजों का इस्तेहज़ार लोगों को दीवाना बनाकर फिरा रहा है, वरना कोई अपनी अपने घर से एक रात मस्जिद में सोने को तैयार नहीं होता। कि ये दीन में खैरखाही है, इसको खैरखाही समझा जाए। होते होते गैर महसूस तरीके से जब कोई चीज आम हो जाती है तो वो रिवाज पर आ जाती है। ये लिबास रिवाज पर आ जाता है, उनके सब पहनते हैं इसलिए हम भी पहनते हैं, सब टोपी पहनते हैं इसलिए हम भी पहनते हैं, सब बुरका पहन रही है इसलिए हम भी पहन रहे हैं। ऐसे लोग जमात में जा रहे हैं तो हमारे वहां ड्राइवर लोग होते हैं कि फेरा मारी ना हो, एक फेरा मारी आऊं, जैसे गाड़ी का फेरा मारते हैं ऐसे चिल्ला का फेरा मार के आ जाऊं। होते होते फिर ये चीजें भी गैर महसूस तरीके पर रिवाज में पड़ जाती है। इसको खैरखाही समझा जाए और खैरखाही समझकर उससे खैरखाही ली जाए कि क्या खैरखाही ली जाए कि उससे जो चीज मुझसे समझनी है मैं उसमें उसको समझने लगूं और उससे उसको समझकर जिन चीजों को करने का मुझे कहा जा रहा है उसको मैं करने वाला बनूं इस यकीन के साथ कि इसके बगैर न मैं संभल सकूंगा न मेरी कयामत तक की नस्लें संभल सकेगी। दुनिया में संभलने की निस्बत पर लोगों का तस्वुर यह है कि किसी के पास जमीनें हो जाए और किसी के पास अच्छी प्रॉपर्टियां हो जाए। अल्लाह ने जितने वाकयात बयान किए हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्लीमात के मुकाबले के लोगों के वो सारे के सारे वो सारी चीजों वाले थे। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसको चाहे दे और अल्लाह जिससे चाहे ले ले। ये जब नेमतें आती है गफलत के साथ तो फिर ये नेमतें इन चीजों को भुला देती है। ये सारे के सारे जो इस्तेमाल होते हैं ये इन चीजों की याद दहानी के लिए। हर आदमी अपने ऊपर रहम खाने वाला बने, तबलीग पर रहम नहीं खाना। तबलीग को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की जात बेनियाज, तो अल्लाह का काम भी बेनियाज। 1400 साल से इस हमारे नबी अलैहि सलाम की बात दुनिया में चल रही है तो क्या 1400 साल से मैं और आप करने के लिए गए थे और हम और आप कल परसों मर जाएंगे और अल्लाह का दिन तो कयामत तक चलेगा तो क्या हम और आप करने जाएंगे? अल्लाह जिससे चाहेंगे उससे अपना काम ले लेंगे। अल्लाह को जब अपना काम लेना होता है तो फासिक और फाजिर लोगों से काम ले लेते हैं, फाजिर और फासिक से। इमाम अहमद इब्न हंबल हमेशा एक जुमला फरमा देते रहम अल्लाह अबुल हैसम, रहम अल्लाह अबुल हैसम। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों इसको बार बार दोहराते हैं? देखा इसके साथ एक वाकया जुड़ा हुआ है। जी क्या वाकया जुड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जब खल्क़े कुरान का मसला पेश आया तो अहले इल्म का मजमा तीन हिस्सों पर तकसीम हो गया। एक मजमा वतन छोड़कर चला गया, एक मजमा वो था जिसने बादशाह के साथ जो बादशाह कह रहा था उसमें हमें हां मिला दी, और एक मजमा वो था जिसने तौरिया किया। उलमा समझते हैं इसको कि जबान से कहा कि हां ठीक है हम अबूल अकीदा रखते हैं कुरान के मुतालिक जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन दिल से हमारी वही मान्यता है कि अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। आखिर में मेरी बारी थी, मेरी बारी। लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई थी कि इमाम अहमद क्या कहते हैं। कहा मैंने भी यह तय किया कि मैं कह लूंगा, पूरा बगदाद जमा है और बगदाद के सारे लोग जमा है, तो लोगों की निगाह थी कि इमाम अहमद क्या कहते हैं, और पूरा बगदाद जमा है, पूरा शहर इमाम के जवाब को सुनने के लिए। कहा मेरे दिल में बात यह आई कि मैं भी कह दूंगा कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं वो, बाकी मेरे दिल में वही अकीदा है कि अल्लाह का कलाम है। कहा मैं जा रहा था, इतने में एक आदमी लोगों को धक्का मारते हुए मेरे पास आया और मुझे आकर कहा कि इमाम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं नहीं जानता हूं, मैं जो कह रहा था कि अल्लाह चाहे किसी से भी काम ले ले। कहा धक्के मारता हुआ मेरे पास पहुंचा और उसने कहा इमाम मुझे जानते हो? तो उसने कहा, मैंने कहा कि नहीं। कहा मैं बगदाद का मशहूर डाकू अबुल हैसम हूं, मैं बगदाद का मशहूर डाकू अबुल हैसम हूं, आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। कजी क्या कहना है? कजी बात यह अर्ज करनी है कि आपको बुलाया गया है और अगर आप इनकार करेंगे तो बादशाह के कोड़े लगेंगे, तो ऐसा ना हो कि बादशाह के कोड़ों के खौफ से आप हक बात कहना छोड़ दें। मैं इतने सालों से बनू उपास के कोड़े खा रहा हूं और उनके कोड़े खाने के बावजूद मैंने गलत बात नहीं छोड़ी, तो उनके कोड़ों के खौफ से तुम सही बात मत छोड़ देना। इमाम कहने लगे कि जुमले ने मुझे हिम्मत बंधा दी और मैंने तय किया कि जो कहना है वही कहूंगा। एक चोर आदमी के जरिए से धारस बंधाई जा रही है और वहां जाकर बादशाह के सामने कहा कि मैं अल्लाह के कलाम को मखलूक नहीं मानता, वो अल्लाह का कलाम है। बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कोई जो इसको कम से कम कोड़ों में मार दे। तो जब अल्लाह किसी से काम लेना तय करते हैं तो अल्लाह किसी से भी ले लें। जब तातारियों पर ईमान वालों की तरफ से जुल्म शब्दोमद हुआ तो उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह पाक अरे मुसलमानों के खुदा अगर तो सच्चा है तो हम पर यह जुल्म हो रहा है, अल्लाह तू हमारा इंतजाम फरमा। अल्लाह पाक ने पूरा निजाम बदल दिया कि उन तातारियों का रौब ईमान वालों के दिल में डाला गया और तातारियों के जरिए से इनको खत्म किया गया। एक एक खातून तातारी वो दबे हुए थे, अल्लाह ने उनको उभार दे दिया। और फिर एक खातून आती थी और 50-60 ईमान वालों के मजमे को ये कहकर जाती थी, तुम यही ठहर रहे हो, मैं घर से तलवार लेकर आती हूँ। और एक खातून 50-50, 60-60 के गर्दन काटते थे। अल्लाह को अपनी बात चलानी थी, इनको तो उनके हाथ से खत्म करवाया। फिर अल्लाह ने उसी कौम को ईमान दिया और अल्लाह ने उनसे ईमान को चलाया, तरबारियों को अल्लाह ने ईमान दे दिया। अल्लाह यालम हैथ यजअलु रिसालतहु, किससे कहां क्या काम लेना है वो अल्लाह के इल्म में है। इसलिए मसला तबलीग का नहीं है, मसला मेरी और आपकी जात का है। इतने सालों से पता नहीं किन किन थप्पड़ों से यह दीन गुजरा है। तो अल्लाह पाक उसके सहारा देने वाले पैदा कर देते हैं। खुशकिस्मती यह है कि उसके जरिए से मैं अपने आप को सहारा दे दूं और मेरे जरिए से इस दीन को तकवीयत पहुंचे, ये मेरी सादत मंदी है। उसके बदले में मुझे मिलेगा क्या कि अगर इसका सहारा मैंने ले लिया तो मेरा जीवन वो बनेगा कि मैं अल्लाह की छत्र छाया में और अल्लाह के रहमो करम में आऊंगा, वो जिंदगी मुझे मिलेगी, मेरा जीना अच्छा होगा, मेरा मरना अच्छा होगा, मेरे जीवन की सारी शक्लें अच्छी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे अमल तो बहुत दूर की बात है, मेरे दिल दिमाग में उठने वाली बातें वो भी तोली जा रही है। मेरे जज्बात क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी फिक्र क्या है, वो देख रहा है अल्लाह, उसके भी निजाम हयात पर असर पड़ेगा। अल्लाह पाक ने सूरह कलम में वाकया बयान किया, वो वाकया क्या है का गलत एक, एक एक बाप के चंद बेटों की सोच गलत हो गई, सोच बिगड़ गई, फिक्र बिगड़ गई। एक बाप किसान आदमी है, खेती कर रहा है, और जब खेती तैयार होती है तो उसके तीन हिस्से करता था, एक हिस्सा गरीबों को देता था, एक हिस्सा अपने आइंदा साल की कमाई के बुआई के लिए रखता था, और एक अपनी जरूरत के लिए एक हिस्सा रखता था। जब बाप का इंतकाल हुआ, बेटों की नीयत खराब हो गई। अभी उन्होंने किया नहीं, अभी नीयत खराब हुई है। नीयत खराब यह हुई कि हमारा अब्बा नादान था, यह हरकत करता था, अब हम कटाई में जाएंगे तो हम गरीबों को नहीं देंगे, बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाता है, तो हम हमारी कटाई को रात में ही कटाई कर देंगे। एक भाई समझदार था, उसने कहा ऐसा मशवरा ना करो, ऐसी सोच ना बनाओ, ये गलत बात है। लेकिन वो तो उस पर मुत्तफिक हो गए और उस भाई की बात नहीं मानी। जब वहां पहुंचे तो रास्ता भटके, ऐसा महसूस करने लगे कि हम रास्ता भटक गए। तो एक भाई दूसरे से कहने लगा कि शायद कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी खेती नहीं आ रही अभी तक। तो दूसरा भाई कहने लगा खेती नहीं, हम तो अपनी जगह पर ही आई है, रास्ता नहीं भटके हैं, हम अपनी जगह पर ही है, देखो फला फला आसार है, तो हमारी खेती कहां चली गई। सुबह हुई तो देखा कि पूरे खेत को आग, आसमान से बिजली आई और जलाकर चली गई है। तो क्या बात हो गई, कहीं इनके नियतों का फसाद ने इनके खेती की पायमाली कर डाली, कि इनकी सोच खराब हुई है, इनकी फिक्र खराब हुई है, हमारी सारी चीजें देखी जा रही है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह के फरिश्ते इसको देख रहे हैं। मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीत, जबान से एक जुमला निकलता है वो भी नोट किया जाता है कौन क्या बोल रहा है। अल्लाह के नबी सलम के बात का मफ़हूम है, बाज़ आदमी बाज़ जुमले ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह के पसंदीदा हो जाते हैं, और बाज़ ऐसे बोलते हैं कि जो जहन्नम के तह में पहुंचा देते हैं। इसी की फिक्र हमारे अंदर आ जाए, हम अपनी जिंदगियों की निगरानी करके जीने वाले बने, अपनी जिंदगियों की निगरानी, क्योंकि गफलत के माहौल में हमारे अंदर भी गफलत आ जाती है। आप देखें दो मिनट किसी के पास बैठो, दो मिनट के बाद दिवस शुरू हो जाएगी। किसी के पास बैठकर तजर्बा करके देख लो कि गफलत के माहौल में ऐसी गफलत आ जाती है। अच्छे आदमी के पास बैठो आप, कि दो मिनट अच्छाई की बात होगी, फिर किसी का तस्करा शुरू हो जाएगा, तीसरे मिनट में गइबत की शुरुआत हो जाती है। उलमा फरमाते हैं गइबत क्या चीज है, उसकी तौबा नहीं है, जिना की तौबा है, कि आदमी का और अल्लाह का मामला है, दोनों ने रजामंदी से फेल किया, अगर जबरदस्ती किया गया बंदी का मामला हुआ, रजामंदी से हुआ तो अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह के सामने तौबा कर रहा है कि अल्लाह मुझसे भूल हो गई। लेकिन अगर मैंने किसी के मुताबिक कोई बात कही तो जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। کہ معاشرے میں ایسے جراثیم پھیل چکے ہیں. ایک ایک ایمان والے کو ایمان کی محنت پر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ان چیزوں کی جاگرتی آ جائے. کہ تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ کہ ایمان میں حرکت لانے کی محنت. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا، ورنہ میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اور جب اندر ایمان بنتا ہے تو اچھا اچھا لگتا ہے اور برا برا لگتا ہے. اور جب اچھا اچھا لگنے لگے اور برا برا لگنے لگے تو سمجھ لو یہ ایمان پکا ہوا ہے، یہ ایمان کے نشان میں. اذا سرت کا حسنتک و اذا ساءت کا سیئتک فافهم انت مومن. اے تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کر دے. کہ ایک مجلس میں 50 مرتبہ غیبت کر دی اور پتہ بھی نہیں ہے کہ میں غیبتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے چرچے ہو رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان بیماریوں کے ساتھ جی رہا ہوں، کہ میں اپنے اوپر اتنی محنت کروں کہ مجھے میری اچھائی اچھی لگنے لگے، اور اگر مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو. اور یہ اندر کے ایمان کے بننے پر ہوتا ہے. پھر اندر سے اچھائیاں ٹپکتی ہیں، اندر سے اچھائیاں باہر آتی ہے. لقمان حکیم نے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل کمزور ہوں گے. سب سے پہلے ہر ایک کو جو محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ اس پر، کہ ہر آدمی اپنے اوپر محنت کر کے ان چیزوں کو بنائے. ہمارے وہاں مدرسوں میں مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، بہت ہی مارکا تلارا مسئلہ، الایمان یزید و ینقص. دو مہینوں پر بحث چلتی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. گھٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کہ یہی ہوگا کہ اس کو بڑھانے کی مستقل محنت کرنی پڑتی، اندر کی اس کیفیت کو بڑھانے کی مستقل محنت کرنی پڑتی. ورنہ آدمی نیچے گرتے اتنا نیچے چلا جاتا ہے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر بیٹا باپ کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، سگا بھائی بھائی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اور طبیعت میں اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا کیا آدمی کھیل کھیل جاتا ہے. تو یہ اندر کے ذوق کی بات ہوتی. اس لیے سب سے پہلی جو ہر ایک پہ محنت کروائی جاتی ہے وہ اس ایمان پر محنت، اور اس کے بعد وہ ایمان کی محنت میں ایمان، یہ ایمان بنے اس کے لیے اس گندے ماحول میں سے ایک وقت کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے، کہ اس راستے میں جا کر ایک کیفیت اس کی بنے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایسی زبردست محنت چلائی ہے کہ کپوری قسم کا آدمی جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا ایک ماحول میں آتا ہے، ایمانیات کو آخرت کو سنتا ہے، اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ایک دم کیفیت بدلتی ہے. وہ 5 وقت کی نہیں تہجد بھی پڑھنے کے لیے اٹھنے والا بنتا ہے. گھر میں ایک چمچ نہیں دھوتا تھا وہ 15 آدمیوں کا کھانے کے برتن دھونے والا بن جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بنتا ہے اگر اچھا وقت لگتا ہے تو. یہ اس محنت کی تاثیر ہے کہ اندر یہ چیز پیدا کرتے ہیں. مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. جیسے نبیوں کی محنت سے انسان بنتے ہیں، انسان بن گئے، ایسے یہ اس اندر کی کھوٹ کو ختم کرتا ہے اگر اچھا وقت لگے تو. اس لیے ہر ایک سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو وقت لگوانے کی ترغیب دی جاتی ہے. جیسے ایک آدمی کھانا نہ کھائے تو اس کے اندر ضعف آتا ہے، ایسے اپنے ایمان کو نہ بنائے تو اس کے اندر ضعف آئے گا. اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی عظمت کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی سنانا. اللہ نے نبیوں سے اپنی بڑائی سنانے کا حکم دیا کہ اپنے رب کی بڑائی بولو، اور اب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بولو، کہ یہ اندر جاگرتی لائے گی، اللہ کا دھیان لائے گا. اس کو بولنا ہے. اور پھر آنے کے بعد اپنے مقام پر جتنے دن ہم رہتے ہیں، زیادہ وقت مقام پر ہم رہتے ہیں، کہ اپنے مقام پر ہم ایسے ماحول بنا کر رہے ہیں کہ جس ماحول میں ہم نے یہ جو چیز ہم نے اندر بنائی ہے اس کو طاقت ملے، اس کو طاقت ملے. اگر اپنے اللہ کے راستوں میں جا کر یہ چیز بنا کر آئے اور مقام پر آ کر ان چیزوں کو طاقت ملے وہ ماحول نہیں بنایا، تو پھر جو مقام کا ماحول ہوگا وہ مقام کا ماحول ہمیں چند دنوں میں متاثر کر دے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بیٹا 4 مہینے گیا تھا اب تو نماز بھی نہیں پڑھتا. ارے بھائی وہ اسی بے نمازی کے ماحول میں سے اللہ کے راستے میں گیا تھا. وہ 4 مہینے میں تو سارا کام کرتا تھا، سارے عمل وہ کرتا تھا، لیکن جس ماحول میں لوٹ کر آیا ہے اس کو نہ گھر میں ماحول مل رہا ہے، نہ مسجد میں ماحول مل رہا ہے، نہ محلے میں ماحول مل رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کتب اور ابدال میں سے باقی رہے گا؟ इसलिए हमारे बुजुर्ग हमको ये बात समझा रहे हैं कि इन चीजों को सीखना जरूरी है। इन चीजों को एक आदमी सीखे और अपने वहां वापस आने के बाद अपने ईमान को ताकत पहुंचे, इस माहौल को बनाने को अपनी जरूरत की चीज समझे। अगर ये चीज हुई तो फिर ये अच्छी जिंदगी जीने वाला बनेगा, वरना अगर बनाने की मेहनत नहीं की तो भी खयानत जिंदगियों में आती है। और उसके बाद वापसी में आने के बाद अगर उसको मकाम पर माहौल नहीं मिला तो फिर जो मकाम का माहौल होगा वो माहौल उसे मुतासिर करेगा। माहौल असर किए बगैर नहीं रहता। अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह को हिदायत का मरकज बनाया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि सबसे पहला घर हमने बैतुल्लाह को बनाया, वो क्या चीज है? कि वो हिदायत का मरकज है। इन्ना वलबैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदा, वो हिदायत का मरकज है। लेकिन उस हिदायत के मरकज के अतराफ में एक लंबे जमाने तक सही रुख की मेहनत नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ कि जो बुतपरस्ती अतराफ में थी वो बुतपरस्ती ने बैतुल्ला जैसे बैतुल्ला को नहीं छोड़ा, बैतुल्ला नहीं बच सका। बैतुल्ला के अंदर 360 बुत आ गए। जो हिदायत का मरकज है, अल्लाह का घर है, वो बुतपरस्ती से नहीं बच सका, तो हमारे मोहल्लों का जो फसाद होगा, हमारी मार्केटों का जो फसाद होगा, आपका क्या ख्याल है वो हमारे मोहल्लों को फासिद नहीं कर देगा, हमारे घरों को फासिद नहीं कर देगा? आज देखिए हमारे जवानों की स्टाइलें बदल गई, हमारी बच्चियों का पहरवेश बदल गया, मस्तूरात का पहरवेश बदल गया। हमको कोई पूछे ये कहां से आया तो हम कहेंगे फलां फलां जगहों से आया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन जगहों का कोई आदमी ने कभी आकर हमारे घर के दरवाजे पर यूं नौक दी, भाई साहब हम तरकीब देने आए हैं आपके बच्चे को कि वो ऐसे ऐसे बाल कटवाएं, हम आपके बच्चे को तरकीब देने आए हैं कि वो ऐसे ऐसे कपड़े पहने? आज तक कोई नहीं आया। फिर ये कहे कैसे आ गया? कब वो जो चीज बातिल ने चलाई वो किसी रास्ते से हमारे मोहल्लों में गर्दिश कर रही है, हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में, तो हमारे जवानों को वो चिपकी है। इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी हमारा जवान उससे चिपका जा रहा है। माहौल का असर है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम जैसे इंसानों पर मेहनत करते हैं, ऐसे माहौल के बनाने की मेहनत करते हैं। और नदियों की मेहनत यह होती है कि उसके जरिए से एक एक तरफ तो अफराद बनते हैं और एक तरफ उससे माहौल बनता है। माहौल अदरी रजी अल्लाह तआला फरमाते थे कि हमारे तो बाजार हमारी मस्जिदों के माहौल पर थे। सुकुल मुस्लिमीन का मुसल्ला, बाजार क्या चीज है? बाजार अल्लाह की धरती के सबसे बदतरीन जगह है। बाजार वहां सबसे ज्यादा अल्लाह का गैर बोला जाता है, सबसे ज्यादा अल्लाह का गैर। इसीलिए वहां चौथे कलमे के पढ़ने के बड़े फजाइल है कि वहां अल्लाह का गैर ज्यादा बोला जाता है, तो वहां उस फिजा में वो अल्लाह को बोले। अली फरमाते ऐसी गंदी जगह है जो जमीन पर सबसे बुरी जगह है, वो हमारी मस्जिदों के नक्शों पर हो गई। जैसे जो माहौल मस्जिद का होता है वही माहौल हमारे बाजारों का हो गया, उनके घरों का वो माहौल हो गया। हर ईमान वाले के जिम्मे यह है कि वो अपने आप को ऐसे माहौल में रखें कि जिससे वो अपने इस्लाम पर बाकी रह सके, अपने ईमान पर। क्योंकि अल्लाह ने हमसे मुतालबा किया है कि तुम्हें हमारे पास मुसलमान बनकर आना है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरो मगर मुसलमान की हालत में। तो बहुत ताज्जुब होता है, हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले के घर में पैदा हुए हैं, हमारा नाम ईमान वाला रखा गया है और अल्लाह हमसे कह रहे हैं ईमान वाला मरना, तो क्या शक है कि हम गैर ईमान वाला भी मरेंगे? हाँ, तुम्हारे फरमाते थे और ये फरमाते थे तुम जैसा जियोगे ऐसे मरोगे। कमा तहयून तमूतून व कमा तमूतून तुबातून व तुहशरून, ऐ लोगो तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे और जैसे मरोगे ऐसे ही उठोगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम गमगीन थे। जब इस्लाम ने पूछा कि क्या बात है, क्यों गमगीन हो? कहा मुझे अपने उम्मत के मुताल्लिक फिक्र है। कहा कौन सी उम्मत? ईमान वाले मुसलमान की या गैर ईमान वालों की? कहा ईमान वालों की फिक्र है, इस्लाम वालों की। हाथ पकड़कर बनू सलमान के कब्रस्तान में ले गए और वहां ले जाकर चंद कब्रें थी। एक कब्र कर वाले को कहा कौन मेज़निल्ला, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो गया। तो एक कब्र में से एक आदमी निकला जो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा वापस लौट गया। दूसरी कब्र वाले से कहा तू खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। एक काला कलोटा आदमी निकला, बदसूरत बदशकल, और ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता। उसको कहा वापस लौट जा। پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس حل میں جیا تھا اسی حل میں مرا، اور یہ اس حل میں جیا تھا یہ اسی حل میں مرا. کہ ہمارا مرنا ہمارے جینے پر موقوف ہے، ہم جیسا جی رہے ہیں ہر ایک کو پتا ہے میں کیسا جی رہا ہوں، اور موت اچانک آ جائے گی، کب آ جائے گی ہمیں نہیں پتا ہے. موت کا آنا حق ہے اور اچانک آنا یہ بھی پکی بات ہے، اچانک آ جائے گی. شیطان آدمی کو یہ ترہاتا ہے، ابھی تیرے بہت دن باقی ہے، ابھی تیری لمبی زندگی باقی ہے، وہ اس کو ٹلواتا ہے، تیاری نہیں کرنا دیتا. سوف سوف ابھی نہیں، ابھی بعد میں کرتے ہیں، اور ہو نہیں پاتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے لیے ہر آدمی کو اس کی فکر دلائی جا رہی ہے اجتماع کے ذریعے سے، ان جوڑوں کے ذریعے سے، کہ ان اجتماع میں آنے کو اور جوڑوں کو ایک فنکشن نہ سمجھیں، آ کر چند باتیں سن کر وہاں یہاں سے چلے گئے، بلکہ ہر آدمی جس سطح پر ہے اپنی فکر کرنے والا بن جائے، اپنی فکر کرنے والا بن جائے، اور ہم سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کی فکر کرنے والا بنے. ہر آدمی کے متعلق اس کے ذمہ ذمہ داری ہے، وہ اس جسم پر اتنی محنت کرے کہ یہ جہنم کی آگ سے یہ جسم بچ سکے. ہر ایک کے ذمہ ہے کون انفسکم، اے لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرو. دوسری ذمہ داری کا، دوسری ذمہ داری ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو ہم اپنا توشہ بنائیں، آخرت کا ذخیرہ بنائیں. ہمارے نبی علیہ السلام سے فرمایا واہلیکم نارا، ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہم سوچیں کہ ہماری اولاد کو ہم نے کیسا پالا ہے، کیسا پوسا ہے، کیسا پروان چڑھایا ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے میری کیسی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یا میرے لیے درد سر بنے گی. ہماری بیوی ہماری ماتحتی میں ہے، اس کا کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، ہماری بیوی کا ہم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ترغیب دی، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنے کی ترغیب دی، وانذر عشیرتک الاقربین، جن محلوں میں رہتے ہیں ان محلوں والوں کی فکر کرنے کی ترغیب دی، ولتنذر ام القری، مکے والوں کیا فکر کرو، پھر اطراف والوں کی فکر کی ترغیب دی، ومن حولها، کہ ہمارے ذمے ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور گھر والوں کی فکر کے بعد جن محلوں میں ہم رہتے ہیں ان محلوں میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کی ہم فکر کریں. ہمارے ذمے یہ ذمہ داریاں ہیں. ہمارے قریب اطراف و جوانب کے ایمان والوں کی ہم فکر کریں، اور دنیا میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے کی ہم فکر کریں. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں ہم جائیں گے، اور جہاں ہم نہیں جا سکتے ان کی فکر لے کر ہم افراد کو تیار کر کے، جماعتوں کو تیار کر کے وہاں بھیجیں گے. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام عالمی نبی ہیں، لیکن جزیرۃ العرب کے باہر وہ نہیں جا سکے، جہاں تک جا سکتے تھے خود گئے ہیں، اپنی ذات سے خود سفر کیا، اور جہاں نہیں جا سکے وہاں افراد اور جماعتوں کو تیار کر کے بھیجا ہے. مدینہ منورہ کے 10 سال تھے، 10 سال، ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے 150 سفر کروائے، 150 سفر، ان میں سے خود اپنی ذات سے 10 سال میں 25 سفر میں خود درخواست اپنی ذات سے تشریف لے گئے، اور یکے بعد دیگر اتنے پے در پے سفر ہوئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے آ گئے. مدینہ منورہ میں جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، ان فاقوں کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے پہلی صف بھوک کی وجہ سے وہ لٹ کر گر گئی، کہ کمانے کا موقع نہیں ملا، سفروں کے خرچے ہیں، پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعت بنا کر لانے کو کہہ رہے ہیں کہ نقد جماعت بنا کر لائیں. مردوں کو مسجد میں بھی سکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو عورتوں میں بھیجا جا رہا ہے. تو چند افراد نے یہ قربانیاں دے دی، اللہ نے اس دین کو چلایا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم ہم کو دیا ہے کہ بعد کے لوگ ان کی ڈگر پر چلیں، ان کے نقشے قدم پر اپنے آپ کو لے جائیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم ان سے راضی ہیں جو آگے گزرے، ہم ان سے راضی ہیں، اور بعد والوں میں ہم ان سے راضی ہوں گے جن کی زندگیاں ان سے میل کھائے گی. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان اس کرنے اول کے لوگوں سے ہم راضی ہو گئے، اور بعد والوں میں سے جن کی زندگیاں ان کرنے اول کے لوگوں کے مشابہ ہوں گی ہم ان سے راضی ہوں گے. ہمیں حکم ہے ہم ان کی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کو ان کے مشابہ کریں. یہ برکت کی بات نہیں ہے کہ برکت یا ثواب کی چیزوں کی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داریوں کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھوں کہ جس ماحول سے میری ایمانی فکریں جاگرت رہے،
मैं ईमानी फिक्रों के साथ रहूं। इसलिए कि आदमी की जिंदगी को जो चलाती है वो उसकी फिक्र चलाती है। आदमी की फिक्र उसके अमल का इमाम होती है। इमाम घर बनाने की फिक्र हो गई, पूरी ताकत घर बनाने की तरफ लगेगी। शादी करने की किसी की फिक्र हो गई तो पूरी ताकत उस पर लगाता है। कि आदमी की जो फिक्र होती है उस पर अपनी जान और माल लगाता है। क्या रोजाना हरेक से कहा जा रहा है कि अपने मस्जिद के मशवरे में हर आदमी रोजाना जुड़े। इसको बरकती चीज न समझे, वरना 24 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे कि मेरी जबान से अल्लाह रसूल की कोई बात नहीं निकली होगी। हर आदमी अपना जायजा ले, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैं अपना जायजा लूं, आप अपना जायजा लो। मैं 24 घंटे में मैं अल्लाह को कितना बोलता हूं, अल्लाह के नबी को कितना बोलता हूं, मैं आखिरत को कितना बोलता हूं। अगर मैं बोलता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और नहीं बोलता तो ये मेरी बेफिक्री की बात है। कि जिस चीज की मुझ पर फिक्र खाली होती है मैं उसके चर्चे सबके साथ करता हूं। हजरत साहबा चलते चलते एक दूसरे से यूं कहते थे, इजलिस बिना नूम इंसान, भाई थोड़ी देर तक बैठो, हम अल्लाह रसूल की कुछ चर्चे कर लें। हमारे माहौल से अल्लाह के बोल बोलना खत्म हो गया, आपस में एक दूसरे के इसके चर्चे खत्म हो गए। इसलिए हरेक से बात कही जाती है। हर आदमी रोजाना अपने आप को फिक्रों में जोड़े, ये इसके ईमान को ताजा करता रहेगा। एक तरफ तो उसको खुद को अंदर जागरूकता आएगी, और दूसरा एक एक ईमान वाले में ये इसके अंदर अच्छी फिक्र आ जाए, उसके लिए जो तदबीर की जाती है और माशाल्लाह उसके लिए जो मेहनत हो रही है उसमें ये शरीक हो जाएगा। अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपनी फिक्रों में एक एक आदमी को शरीक किया है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के नबी इस्लाम के जमाने के मालदार लोगों में है, लेकिन आप देखें एक सफर अल्लाह के नबी का ऐसा नहीं होगा जिसमें अबू बकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके साथ सफर में न गए। सारे सफरों में उनके साथ गए, और एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हुजूर के साथ मस्जिद में वो शरीक न हुए हों। कितनी बड़ी तिजारत की मशगूलियतों के बावजूद कि वो अल्लाह के नबी इस्लाम के फिक्रों में शरीक है। ठीक है, चंद लोग मस्जिद में कर रहे हैं तो काम तो होने को हो जाएगा, कोई मस्जिद और जमात बैठी है। चंद लोग मुलाकातों में चले जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि हमारी मस्जिद में मस्जिदवार जमात बैठी है, और हमारे मोहल्ले में काम हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। भाई वो उनका हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मैं अपना देखूंगा। भाई पूरी मार्केट खुली हुई है, ठीक है वो खुली है, मैं मुझे तो नफा उस वक्त मिलेगा जब मेरी दुकान मार्केट में खुलेगी। मेरे साथ तो अल्लाह की मदद मेरे अमलों के बाद मेरे अमलों से होगी, मैं कैसा जी रहा हूं। इसलिए हरेक से बात कही जा रही है, अगर मैं अपने आप को इन फिक्रों में नहीं जोड़ूंगा पता नहीं कौन सी फिक्र हमको खा जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लम के बात का मफहूम है, जो आखिरत के गम को अपना गम बनाएगा अल्लाह दुनिया के गमों से उसको नजात दे देंगे, उसके सीने को अल्लाह गमों से फारिग कर देंगे और हाथ को अल्लाह गिना से भर देंगे। और जो आखिरत के गम को अपना गम नहीं बनाएगा, हमारे और आपके नबी ने फरमाया, उसके दिनों और उसके सीने को और दुनिया के गमों से भर देंगे। और बला असुद फकर, और उसकी गुर्बत को अल्लाह खत्म नहीं करेंगे। गुर्बत का मतलब ये नहीं है कि खाने पीना नहीं होगा। अभी तो एक प्लान नहीं बनाया, उससे पहले आगे के प्लान के मसाइल शुरू हो गए कि लाखों पति है और लाखों पतियों का फकीर है वो, करोड़पति है और करोड़ों का फकीर है वो, कि एक मसला पूरा नहीं हुआ और दूसरा शुरू हो गया, एक इत्मीनान जिंदगी से खत्म हो गया और वही करते करते दुनिया से चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारी जरूरत की चीज है कि मैं इस माहौल में रहूं, कि अपने आप को मस्जिद के माहौल के साथ जोड़े। उसके बाद सबसे पहली जो फिक्र है वो मैं अपने घर वालों की फिक्र करूं। मेरे घर वालों की मैं सारी चीजों की फिक्र करता हूं, मेरे बच्चों में ईमान पैदा हो जाए, मेरे बच्चे मुसलमान परवरिश पाएं, उसके लिए मैं अपने बच्चों को क्या दे रहा हूं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तो सारे बच्चों को ईमान वाला पैदा करता है, लेकिन उनके मां बाप उनको यहूदी बना देते हैं, उनके मां बाप उनको नसरानी बना देते हैं। अरे भाई मां बाप कैसे बना देते हैं, क्या उनके उस माहौल से, उनके रहनी करने से। हमारे घर में हमने बच्चों को कौन सा माहौल दिया है, हम देखें। हमारे बच्चे हमारी सारी हरकतें देखते हैं। भाई घर में फोन बजा, एकदम घंटी फोन की बजी, अम्मी रोटी बना रही थी, एकदम रोटी बनाते बनाते उठी और बच्चा देख रहा है कि फोन इतना इंपॉर्टेंट है कि अम्मी ने रोटी छोड़ दी और फोन उठा रही है। अच्छी गहरी नींद में अब्बा थे और फोन की घंटी बजी, अब्बा ने नींद खोल दी और फोन को उठा लिया। अम्मी कपड़े धो रही थी और फोन की घंटी बजी, अम्मी मशीन पर से फोन उठाने के लिए आ गई। अब्बा दस आदमियों के साथ मजलिस में बैठे थे, घर में फोन की घंटी बजी, अब्बा दस आदमियों की मजलिस छोड़कर फोन उठाने जा रहे हैं। ये कौन देख रहा है? क्या हमारे घर का बच्चा देख रहा है? अब उसके दिल में हसमत आ गई कि फोन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर रोटी बनाते हुए भी फोन आए तो उठाने वाली चीज है, कपड़े धोते हुए फोन आ जाए तो वो उसके लिए जाने वाली चीज है। दस आदमियों की मजलिस में बैठे हैं तो दस आदमियों की मजलिस में अगर फोन आ जाए तो उसे छोड़कर जाने वाली चीज है कि उसने अपने आंखों से देखा। अब वो बड़ा होगा तब उस फोन के मुतालिक उसकी मेंटेलिटी बन गई है। अब वही बच्चा देख रहा है कि अजान हुई है, अब्बा अब्बा में क्या हरकत पैदा हुई तो देख रहा है, कोई हरकत पैदा नहीं हुई। रोटी मम्मी बना रही थी, अजान हुई है, क्या हरकत पैदा हुई? कभी कोई हरकत पैदा नहीं हुई। अम्मी कपड़े धो रही थी, अजान हुई, क्या हरकत पैदा हुई? कोई हरकत पैदा नहीं हुई। ये बच्चे को उसके माँ बाप बेदीन बना रहे हैं, जबान से बोल नहीं रहे लेकिन अपने घर का माशरा ऐसा बनाया कि उस अमल की अजमत खुद ब खुद उसकी तबीयत से कम हो रही है कि माँ बाप यहूदी बना देते हैं और माँ बाप नसरानी बना देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आता है कि जब घर में जाते थे तो ऐसे खुली में जाते थे कि अम्मी जान फरमाती है हमें यकीन होता था कि अब हमें छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे कि गोया हमें पहचानते ही नहीं। इसके लिए कहते हैं कि हम अपने घर को माहौल बनाए। इस तालीम के जरिए से इनको ये बातें सुनानी भी है और अपने अमल के जरिए से इसका माहौल हमें बनाना है। इन फितरों के माहौल में अगर हमारे घर की चार दीवारी में हमारे बच्चों को ये नहीं मिला तो कहां मिलेगा? हमारे घर में हमें तालीम के जरिए से ये चीज सुनानी होगी। हमारे बच्चे दुनिया भर की सारी चीजें सुनते हैं। आप हर आदमी सोचें कि मैं अपने घर वालों को अल्लाह रसूल की बात कितनी सुनाता हूं। मेरे घर में मैंने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, मुझे आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैंने उसको बिठाकर अल्लाह रसूल की बात मैंने कब की है? अल्लाह के बंदे तो मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं, तुझे और मुझे एक दिन मौत आनी है, तो अपनी कब्र में सोएगी, मुझे अपनी कब्र में सोना है। और हमारी औलाद ये हमारे पास अमानत है, या तो हमारी जन्नत बनेगी या हमारी जहन्नम बनेगी। हमने कितनी मरतबा उससे मुलाकातें की है। 24 घंटे में मेरे घर में एक तालीम का एक अमल है तो बुजुर्गों ने दिया, उसके अलावा मैं आखिरत की बात कितनी देर करता हूं। हमारे घर होटल बनते हैं, हम खाना खाते हैं इज्तिमाई, हमारे घर लॉज बनते हैं, हम सोते हैं, हमारे घर में अल्लाह रसूल के तस्करे कितने हो रहे हैं। हमारे घर इन चीजों से खाली न हो कि इनके मुजाकरे हमारे घरों में हो। हमारे बच्चों को हमारे घरों से ये चीज मिलनी चाहिए। और इस चीज के अलावा हमारे घर का माहौल, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नफल नमाजें घर में पढ़ना मसनून है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फजर की इशराक के अलावा सारी नफल नमाजें घर में पढ़ते थे। इशराक में फजर के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर बैठते थे और इशराक पढ़कर जाते थे, बाकी सारी नफल नमाजें घर में होती थी। हमारे हजरत फरमाते हैं कि हम घरों में अमल करें, हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा देखेगा अब्बा को अमल करते हुए, उससे घर का माहौल बनता है। हमारे बच्चों में गैर महसूस तरीके से ये जिंदगी मुंतकिल होगी। हाँ, और तीसरी बात जो है, हमारे घरों में हमें रवैये अच्छे करने होंगे, और खासकर अगर हम अपनी नस्ल को संभालना चाहते हैं, हमारी नस्ल की जो जो जो, जो, जो परवान चढ़ाने वाली चीज है वो उसकी माँ है। माँ बच्चे जो है वो माँ के ताबे होते हैं, बाप के ताबे नहीं होते हैं। हम किसी को पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो हम पूछते हैं भाई तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है, हम ये नहीं पूछते भाई तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है। अरबी में पूछते हैं लगतुल ओम, कोई ये नहीं पूछता लगतुल अब। अंग्रेजी में पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, कोई ये नहीं पूछता फादर टंग। फारसी में पूछते हैं तुम्हारी मादरी जबान कौन सी है, कोई ये नहीं पूछता तुम्हारी पितरी जबान कौन सी। कि बच्चों को बनाने वाली उसकी माँ है। माँ हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं औरत मर्द से ज्यादा नेक होनी चाहिए। एक जगह बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि औरत के लिए सबसे पहली उसकी उसका मदरसा उसकी गोद है, तो दूसरे कहने लगे नहीं मौली साहब, उससे पहले उसका पेट है। इस पेट में बच्चा बनता है, ये पेट हया वाला है, ये पेट तकवे वाला है, ये पेट अल्लाह के डर वाला है, ये पेट अल्लाह के खौफ वाला है, ये डाई है डाई, ये सांचा है, इसमें बच्चे की बनावट हो रही है। अगर ये हया तकवे और पाके वाला है तो इससे इसमें बनने वाला बच्चा हया तकवे और पाके वाला बनेगा। ये पेट में बच्चा बन रहा है और उसकी बीवी जबान से गलत बोल रही है, आंखों से गलत देख रही है, कानों से गलत सुन रही है और पता नहीं किस किस माहौल में इस अमल के साथ जा रही है, तो उसके अंदर के जज्बात क्या उस बच्चे पर असर नहीं पड़ेंगे? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी हमारी नस्ल समझ जाए तो हमें उस नस्ल की मां पर मेहनत करनी पड़ेगी, उस नस्ल की मां पर मेहनत करनी पड़ेगी। और मां मां पर मेहनत करने के लिए डांटने के रवैये नहीं है का उसको वो मोहब्बत चाहती है। हमारे नबी इस्लाम ने अपनी घरवालियों के मुतालिक फरमाया वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, अच्छाइयों के साथ उनके साथ रवैये बनाओ, अच्छे रवैयों के साथ उनके साथ बर्ताव बरतो, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। कि हमारी बीवियों को हमें अपने इस फिक्र में शरीक करना पड़ेगा। अगर हमारी बीवियां इस फिक्र में शरीक हो गई तो वो अपने बच्चों को खुद ही संभाल लेगी। सहाबा का मजमू को आप देखो, बहुत सारे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, उनके बच्चों को उनकी माओ ने परवान चढ़ाया है कि उनकी माओ के साथ अच्छा रवैया। अल्लाह के नबी इस्लाम अज़वाज मुतहरात को मोहब्बत दे देते, और हमारे बच्चे जिनको हमें परवान चढ़ाना है उनके साथ भी हमें रवैये अच्छे करने होंगे। हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया तुम अपने बच्चों की इज्जत करो, वह अकरम औलादकुम, अपने औलाद को इज्जत दो। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे जब तुम्हारे जूते के बच्चे तुम्हारी साइज के हो जाएं तो समझ लो तुम्हारा बेटा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त हो गया, उसको दोस्त बनाकर तुम संभाल लो, वरना तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे खड़े हैं जो उसको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। तो उसको दोस्त बनाने की चीज, हमारे नबी अलैहिस्सलाम बच्चों को दोस्त बनाते थे, घर में घोड़ा बन जाते थे और बच्चों को यहां बिठाकर गोल गोल घूमते थे, उनके नवासी हजरत उमामा को यहां कंधे पर बिठाकर बाजार जाते थे कि भाई ऑर्डर नहीं बात चलेगी, ए तो ऐसा नहीं करता, बच्चों में और हमें चिड़ पैदा हो जाएगी, फिर ये होगा हम एक दरवाजे से दाखिल होंगे और बच्चा दूसरे दरवाजे से बाहर जाएगा। क्या हमारे बच्चों को अल्लाह के नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि अपने बच्चों का इकराम करो, कि छोटे छोटे बच्चों में भी इज्जत नफ्स है, उसको अगर हम जलील करेंगे वो हमारी जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे खिलाफ जाएगा। कि खाली दीन की बातें नहीं करनी, दीन की बातों को दीनी रवैयों में बात करनी है, दीन के रवैयों में उसका लबादा पहनाकर, तो इंशाल्लाह उस शाह दीवारी में पलने वाले बच्चे हमारी आंखों के ठंडक बनेंगे, वो ईमान वाले बनेंगे। और खुसूसन इस माहौल में हमारी बच्चियां हमारे बच्चे का हम पर दूसरी जिम्मेदारी हमारे घर वालों की है कि घर में तालीम के जरिए से ईमान आमल के मुलाकरों के जरिए से इस पर फितन माहौल में हम अपने नस्ल को बचाने की फिक्र करें। तीसरा, हम अपने मोहल्लों की फिजा को अच्छी बनाएं। हम मामूली ना समझें मोहल्लों की फिजा को, और मोहल्लों की जो फिजा बनेगी वो रोजाना की घर घर की मुलाकातों के जरिए से बनेगी, हमारे अमूमी गश्तों के जरिए से बनेगी। कि हमने जो फिक्र आई और हमारे मोहल्ले हमारे घरवालों में जो फिक्र आई, हमारे मोहल्ले के एक घरवाले में ये फिक्र आनी चाहिए। अगर ये मोहल्ले वालों की फिक्र बन गई तो हमारे हमारे घर एक होते होते एक अच्छे फिजा के अंदर आ जाएंगे। और खुदा न करे हमने अपनी फिक्र की लेकिन मोहल्ले की फिक्र नहीं की, तो हम इससे मुतमईन न रहें कि मोहल्ले में जब बेदीनी आएगी तो वो बेदीनी हमारे घर को मुतासर न करे, इससे हम मुतमईन न रहें। समंदर पार से बेदीनी चलती है, वो समंदर पार से चलने वाली बेदीनी मेरे बच्चे को मुतासिर करती है, मेरी बच्ची को मुतासिर करती है, मेरे घर के कंडीशन को और पता नहीं किसकी किसको मुतासिर करती है। तो जब समंदर पार से चलने वाली बेदीनी मुतासिर करती है तो मेरे मोहल्लों में से उठने वाली बेदीनी मुतासिर नहीं करेगी? अरे भाई बैतुल्ला जैसा बैतुल्ला अतराफ की बेदीनी से नहीं बच सका तो क्या मेरा घर मेरा घर बच जाएगा? क्या नहीं बच पास? इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि मस्जिद के अफराद इसको अपनी जरूरत की चीज और अपनी जिम्मेदारी की चीज समझें, अपनी जिम्मेदारी की चीज, अपनी जरूरत की चीज। कि हमारे मोहल्लों की फिजा, हमें तो हुक्म है कि घर कहां बनाओगे? कभी मालदारों की कॉलोनी में बनाएंगे? क्या घर उस जगह बनाओ जहां के पड़ोसी अच्छे हों, उतलबी जार कब्रदार के अच्छे पड़ोसी देखकर अपने घरों को बनाओ ताकि तुम्हें एक अच्छा माहौल मिले, अच्छे पड़ोसी। अब हम अच्छे पड़ोसी कहां लेने जाएंगे? जो है उन्हीं को अच्छा बनाने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और रबियों वाली मेहनत ऐसी है कि इंशाल्लाह वो अच्छे बना देगी। मक्का मुकर्रमा के जो लोग थे उनके जमाने को जाहिलियत का जमाना कहा गया,
لیکن نبی والی محنت نے ان کو بہترین مجموعہ بنا دیا. ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ کی دھرتی کے سب سے اچھے لوگ یہ ہیں, اولئکہم خیر البریہ, اللہ کی دھرتی کے یہ بہترین لوگ ہیں, اللہ کے زمین کے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. یہ محنت ایک ایک کے گھر پر جا کر ہم ملاقاتوں کا نظام بنائیں, اس سے ایک طرف تو محلے کی فضا بندی چلی جائے گی, دوسری طرف ہم جس کے پاس جا کر خیر کے پر آنے کا ذریعہ بنیں گے, کل قیامت کے دن ان کی دینداری ہمارے نام عمل میں تولی جائے گی. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں, یہ بہت بڑی کمائی ہے. حضرت مولانا محمد ورثہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دنیا سے لوگ چیزوں کو کما کر جاتے ہیں, آپ دنیا سے انسانوں کو کما کر جاؤ, انسانوں کو کما کر جاؤ. آپ کی قوم میں ایک بڑے میاں اونٹوں پر بیٹھ کر آتے تھے, وہ بڑے میاں نے راتیں کچھ جاگ لی, چند راتیں جاگنے کی تھی, وہ جاگ چکا بڑے میاں اور قبر میں جا کر مٹی میں مل گیا. اب ان کو کتنے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے, ان کو کون قبر میں جا کر بتائے گا, حاجی صاحب, مولانا صاحب, مولانا نذیر صاحب, آپ نے جو راتوں کے گشت کیے تھے اور جو چھپ چھپ کر کھیت میں ملاقاتیں کی تھی, آج ایک ایک گاؤں میں 500-500 علماء پیدا ہو چکے ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کھاتے میں جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہم ان کے کھاتے میں جائیں گے, وہ اونٹ بان کے کھاتے میں جائیں گے جس نے رات میں گشت کیے ہیں, رات میں اپنے کپڑے میں روٹی باندھ کر آتا تھا, ہمارے بوڑھوں کی خوشامدیں جس نے کی تھی. ایک ایک گاؤں میں 500-500 علماء پیدا کر دیے, کہ انسانوں کا ٹھٹ مارتا ہوا سمندر کما کر چلا گیا. زندگی تو سبھی کی گزرتی ہے, اس زمانے کے ان کی بھی گزر گئی اور اس زمانے کے ان جیسے جتنے ہوں گے ان کی بھی گزر گئی, لیکن ایک کام کر کے گیا اور دوسروں نے اپنے رواجی زندگی گزار لی, تو کیا کل قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایک کے نام اعمال میں ہزاروں علماء, ہزاروں حفاظ, ہزاروں حجاج, ہزاروں خید خیر کے کام کرنے والے, یہ جتنے مومن برادری اور جتنے بھی کہیں بمبئی میں جا کر کریں یا دنیا کے کسی کونے میں جا کر کریں, آخر میں جا کر وہیں جائے جائے. ہارون رشید نے بادل دیکھا تو بادل سے کہا, وہ بادل تجھے جہاں جا کر برس نہ ہو برس, خراج تو ہمارے ہی پاس آنے والی ہے. یہ مومن قوم جہاں جا کر جو کرے کرے, خراج تو انہیں کے کھاتے میں جانا ہے. جنہوں نے چند راتوں راتوں کو جاگ لی, چند جاتے جاگ لی, چند لوگوں کے دھکے کھا لیے, کتنی بڑی کمائی کر کے چلے گئے. ایسی کمائی کرنے کا موقع ہمیں اور آپ کو اللہ نے دیا ہے, اس کو ہم معمولی نہ سمجھے. جس پر میری محنت ہو رہی ہے وہ کل کتنا کام کرنے والا بنے گا مجھے نہیں پتا ہے. رب مبلغین اوان انسان, بعض وہ لوگ جن کو تم کام سمجھا رہے ہو وہ تمہارے سمجھانے والوں سے آگے نکل جائیں گے. جس نے مولانا عمر صاحب کو سمجھایا تھا, کیا اس کو پتا تھا کہ 30 سال تک یہ بندہ پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنائے گا؟ کہ 30 سال تک اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا, جس آدمی نے سب سے پہلے اس پر محنت کی ہوگی, کیا اس کو پتا تھا کہ ایسا زوردار ہیرا ہے کہ جس پر تمہاری محنت ہو رہی ہے تمہیں نہیں پتا وہ دنیا میں کتنا کہاں جا کر کام کرے گا؟ انسانوں کو کما کر جانا بہت بڑی کمائی. مولانا اس رحمۃ اللہ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت نے لکھا, لوگوں کو کمانے کو معمولی چیز نہ سمجھو. پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک ہمارے اپنے اعمال ہیں, کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی کر کے جائے موت پر اس کا دفتر بند ہو جائے گا, ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا. اور وہ جو کچھ کر کے گیا, اگر اس کو یہ پوچھا جائے کہ بتا تو جو کر کے آیا کس کے لیے کر کے آیا, تو کہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ 100% تیرے لیے کر کے آیا. مجھ سے پوچھا جائے گا بتا کرسی پر کیوں بیٹھا تھا, اگر بیٹھنا اللہ کے لیے تو جنت بنے گی, ورنہ تو اس کو یہ کرسی دین کی بات کرتے کرتے جھنڈ میں لے جائے گی. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جو کیا تھا کیسا کیا تھا, تو کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں اللہ تو نے جیسا کہا تھا ایسا کر کے آیا ہوں؟ اگر فرماتے تھے اس کو تو اچھا کرتے رہے, لیکن اس کو کرتے ہوئے لوگوں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو. اگر فرماتے تھے ایک آدمی محنت کر کے ایک آدمی کو مسجد میں لے آیا, وہ بالکل نئے آدمی ہے, اسے ایک وقت کی نماز پڑھنا نہیں آتا, اس نے اس کو دیکھا دیکھی نماز پڑھی, یہ رکوع کر رہا ہے, وہ رکوع کر رہا ہے, وہ سجدہ کر رہا ہے, وہ بھی سجدہ کر رہا ہے. اچھا بتاؤ, دیکھا دیکھی کرنے والے کا عمل پکا ہوگا کچا ہوگا؟ ارے بولو تو صحیح بھائی, کچا ہوگا. حضرت فرماتے تھے اس کے کچے عمل کا اجر اس کے کھاتے میں کچا لکھا جائے گا, لیکن اس کے کچے کا عمل تمہارے کھاتے میں پکا لکھا جائے گا. جو بھی آدمی کسی پر محنت کرتا ہے اس کو پکا بنانے کی نیت سے کرتا ہے یا کچا بنانے کی نیت سے؟ کہ تمہاری نیت پر اس کچے کے عمل کو تمہارے کھاتے میں پکا لکھا جائے, ایسا ذخیرہ بنانے کو معمولی نہ سمجھو.
لیکن ایسے ذخیرے شیطان بنانے نہیں دیتا. ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. کہ آدمی اپنا اپنا کر لے کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہزاروں انسانوں کو کما کر نہیں مرنا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی ہیرے اس کے ہاتھ لگ گئے وہ تو پتہ نہیں کتنا کام کرے گا. حضرت خالد ابن ولید کو ان کے بھائی تشکیل کر کے لائے، ان کے بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 4 سال ان کو ملے، لیکن وہ ایسا زوردار ہیرا نکلا کہ پورا شام انہوں نے پتہ کیا تھا. جو محنت کر کے لایا تھا وہ اتنا نہیں کر سکا، لیکن جس کو لائے تھے وہ بہت کچھ کر گئے. حضرت ابو ہریرہ کو ایک آدمی محنت کر کے لایا، وہ امام المحدثین بن گئے. امام المحدثین سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے بیان کی، ہمارے نبی کے ساتھ رہنے کے چند سال ملے، 4 سال ملے، لیکن امام المحدثین بن گئے. جو محنت کر کے لایا تھا وہ امام المحدثین نہیں بنائے. ہمیں نہیں پتا ہمارے ہاتھوں سے جن پر محنت ہوگی وہ ہمارے بعد دنیا میں کتنے کام کریں گے. تو شیطان ہم کو کام نہیں کرنے دیتا، اس لیے ہماری اس کو کمائی کی چیز ہم سمجھیں، کمائی کی چیز کے لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کے من میں سماجت کرنا، گھر گھر جانا، اس سے ہماری کمائی ہوگی اور اس کے ذریعے سے محلے کی فضا بنے گی، محلے کا ماحول، محلے والوں کا تعلق مسجد سے جڑے گا. اس لیے روزانا ہمارا اپنے محلے میں وقت دینا. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان اعمال کے مشابہت ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عین سنت ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اقرب الی سنت ہے، کہ اللہ کے نبی لوگوں کے پاس جاتا تھا. مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں پڑھا، حضرت نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے، مغفرت تو ہو ہی جائے گی، لیکن یہ کرنے اول کے لوگوں کی طرح مشابہت کر کے لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس امید پر کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کرنے اول کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ، کہ جان ہماری لگے، مال ہمارا لگے اور زندگی امتی بنے کہ کرنے اول کے لوگوں نے یہ کیا ہے. کہ ہم ان کے مشابہت کر رہے ہیں اس امید پر کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. کہ اس کو ہم اپنے لیے بڑی کمائی کی چیز سمجھیں، اس کو خالی 2.5 گھنٹے نہ سمجھیں، اس کو ہم خالی گشت نہ سمجھیں. اس کے ذریعے سے ایک طرف تو محلے کی اطلاع بنے گی، میری زندگی میرے نبی اسلام کے اعمال کے مشابہ ہوتی چلی جائے گی، کل قیامت کے دن جن کی میری مشابہت ہوئی ہے ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا. المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا انہیں کے ساتھ حشر ہوگا. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے عملوں سے محبت کرتے ہیں، بچنے کی فکر نہ کریں، بچنے کو تو بچ جائے گا. یہ چند دن ہیں، پتہ نہیں یہ پانی کا بابولا کب پھوٹ جائے، پتہ نہیں ہے، یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے. ہم ان مشقت کو جھیل جائیں. یہ مشقت چلی جائے گی، مولانا نذیر صاحب کی مشقت چلی گئی، مولانا نذیر صاحب کی مشقت چلی گئی، اتنا بڑا باغیچہ باغ لگ گیا، انہیں کون قبر پر جا کر سنائے گا. کتنے باغ و بہار ہے، کتنے علماء، کتنے حفاظ، کتنے مدرسے. مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی. وہ مشقت چلی گئی، تھوڑے دن کا بھوک چلی گئی، لیکن ہزاروں کا تھوک میں جاتا ہوگا، تھوک میں ابھی اس اسٹیمر کا اجر بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہوگا. محنت کرنے والوں کا، ڈنڈول والوں کی محنت ان کے کھاتے میں جائے گی. وہ قبر میں سوتے سوتے مزے کر رہے ہیں، ایسی کمائی کرنے کا ہم کو موقع ملا ہے. حیات الصحابہ کی پہلی آیت حضرت نے ذکر کی، کہ صحابہ کا ایک مجموعہ تھا جن کو کام کرنے کا موقع ملا انہوں نے کام کر کے بتا دیا، اور جن کو بدر میں موقع نہیں ملا وہ انتظار میں تھے ہماری باری کب آئے گی، ہمیں موقع کب ملے گا. منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر، جن کو موقع ملا وہ بازی لگا گئے، اور جنہیں موقع نہیں ملا وہ انتظار میں ہیں ہماری کب باری آئے گی، ہمیں کب موقع ملے گا. یہ آنکھ بند ہو گئی ہماری باری چلی جائے گی. بھائی زندگی کیا ہے؟ کہ زندگی وقت ہے. وقت کیا ہے؟ کہ وقت ہی زندگی ہے. یہ چلا گیا دوبارہ نہیں آتا، کل کا دن چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا، فجر سے لے کر جمعہ تک کا وقت چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا. اسی میں ہمیں کمائی کرنی ہے، इसलिए अपनी फिक्र, अपने घर वालों की फिक्र, अपने मोहल्लों वालों की फिक्र, उससे मकामी माहौल बनेगा, ऐसा माहौल बने कि हमारे वहां बेदीन छुप न सके। जैसे मदीना मुनव्वरा में निफाक जो है वो मक्के में नहीं था, वहां सब खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन मदीने की फिजा ऐसी पाकीजा बनी, ऐसी पाकीजा बनी कि उस माहौल में मुनाफिक रह नहीं सकता था, वो अपने आप को छुपाता था कि हमारी फिजा ऐसी पाकीजा बने। हमें एक ऐसा सोच था, हमने लोगों से सुना कि आपकी पाकीजा ऐसी जोरदार फिजा किसी जमाने में बनी थी, बम्बई वाला पैंट शर्ट पहनता था वो आपके मोहल्लों में पैंट शर्ट के साथ नहीं आता था, कि आपकी फिजा बनी थी, आपके बड़ों की कुर्बानी की फिजा बनी थी, कि बम्बई वाला यहां आता है तो अपना ड्रेस बदलता था, कुछ फिजा में इस लिबास के साथ नहीं जा सकता हूं, कोई अपने घर में टीवी लाने की हिम्मत नहीं करता था, वो आपकी फिजा थी, उसने आपको बचा कर रखा है, ये फिजा बनाई गई है, उसकी मेहनत हुई है, ये तो हल्की फुल्की मेहनत नहीं, असर छोड़े अगर मजबूत मेहनत हो जाए तो फिर क्या से क्या हो जाएगा, अगर मेहनत न हुई तो फिर मेहनत नहीं हुई तो बैतुल्ला नहीं बच सका, तो मेरा और आपका मोहल्ला कैसे बच जाएगा, अतराफ के खुराफा डेरे डाल देंगे। और चोर वही आता है जहां पूंजी होती है, जिसके अच्छे माहौल है, जिसके वहां अच्छी फिजाएं हैं, शैतान उनसे ज्यादा यहां मेहनत करेगा। अरे भाई ये प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, ये दीनदार लोग हैं, इन्हीं में मेहनत करनी है, फकीरों के पास क्या मिलना है, ये मालदार लोग हैं, दीनदार लोग मालदार है, दीन के मालदार है, इसलिए अपना हिसार बनाओ, हिसार हिसार ऐसा बन जाए कि बेदी नहीं घुस न सके, मोहल्ले का हिसार गश्तों के जरिए से, ढाई घंटे की मेहनत के जरिए से, फिर उसके बाद अतराफ की फिजा के दूसरे गश्तों के जरिए से हम अपने पड़ोसियों की फिक्र करें, हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोसी हैं, उनका हक बनता है, शरीयत में तो थोड़ी देर के लिए कोई तुम्हारे पड़ोस में आकर बैठ जाए उसका भी हक बनता है, वह साहिब बिन जंब, अगर पांच मिनट के लिए तुम्हारे पास कोई आकर बैठा है तो पांच मिनट के पास आकर, पांच मिनट के लिए आकर बैठने वाले का भी हम पर हक बनता है, हमारे अतराफ में ईमान वालों की बस्तियां हों और वो ऐसे की बंजर की बंजर हों। आज सुबह में जोन की कर्जदारी सुन रहे थे, जो हजरात थे उनसे पूछो, अभी हमारे वहां मकतब, हमारे अतराफ के देहातों में मकतब नहीं है, बच्चे हमारे अतराफ के देहात ऐसे हैं जहां मुसलमान रहता है, वहां इबादत खाने नहीं है, मुसलमान इज्तिमाई नमाज नहीं पढ़ रहा, और एक दो देहात की मैं बात नहीं कह रहा हूं, सोच नहीं सकते, मैं तो हैरान हो गया, हैरान हो गया कि हम सोच नहीं सकते कि यहां के उलमा दुनिया के पता नहीं कैसे कैसे देहातों में जाकर काम, राजस्थान में मैं खिदमत कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, और यहां सुबह जोनों की जमातों ने सुनाया, आठ जमातें पैदल चल के आई, आपके करीबन 50 देहातों की उन्होंने कारोबारियां सुनाई कि वहां बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई सोच नहीं सकता, यह मैं कच्छ की बात नहीं कह रहा हूं, और यह मैं राजस्थान के जंगल की बात, जंगल राजस्थान के रेगिस्तान की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उस इलाके की कह रहा हूं जिसके एक एक गांव में 500 अलम है, इबादत खाने वाले हैं, और लोगों को कलमा नहीं पता, कलमा नहीं जानते हैं, हमारा इतना सारा मजमुआ होने के बाद क्या ये हो सकता है, रिततुन वला अबा बकरिन लहा, अगर हमने फिक्र नहीं की, हम ये सोचे कि उस जगह पर अगर मेरा सगा भाई हो, उसी जगह पर मेरा सगा बहन हो, और उस जगह पर मेरे मां बाप हो और उनकी ये हालत हो, तो क्या मेरा दिल नहीं दुखेगा, ये सारे के सारे ईमान वाले ये कलमे के हमारे भाई हैं, वो इस हर दुनिया से चले गए और हम उस पर राजी हैं, उसके लिए न मुझे जान नहीं लगानी, उसके लिए मैं मां नहीं लगा सकता, हमारा दिल उसके लिए कोई ना दिल मिला है। हजरत साहबा के मुतालिक आता है, काना यह तमल मलू का तमल मलू सलीम, ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है, इन बेदीनी को देखकर हमारी पेशानी पर बल पड़े, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इसके लिए हम इसको सिर्फ तबलीग, हम सब तबलीग वाले हैं, हम सबके जिम्मे हैं, हम अपने अतराफ की फिक्र करें, करीब के मोहल्लों के दूसरे गश्तों के जरिए से, और दूर के मोहल्लों की जो हमसे रोजा जमातों के जरिए से, ऐसी अल्लाह ने हमको यह निजाम दिया है मकामी काम का कि इसके जरिए से एक फिजा बनेगी और एक दीनी माहौल का एक एहसार कायम हो जाएगा, जहां बेदीनी नहीं बचेगी और बेदीनी उस माहौल में घुस नहीं सकेगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये इज्तिमा की जितने भी मजलिसें हैं, ये कुछ कहने सुनने की बातें नहीं है, بلکہ ہم میں سے ایک ایک آدمی اپنے زندگی سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کے متعلق جاگرت بنے. زندگی روزانہ موت کی طرف جا رہی ہے, اس کو کچھ کرنے میں لگائیں گے تو بھی اس کو موت کی طرف جانا ہے, اور اس کو سستی کے ساتھ گزار دیا تو بھی موت کی طرف جانا ہے. لیکن کرتے ہوئے گئے اور بغیر کیے گئے اس جانے میں بہت بڑا فرق ہوگا. ہم اپنے گھر والوں کا کام کر کے آتے ہیں, اپنے گھر والوں کو خوشی خوشی ملنے کا جی چاہتا ہے, گھر والے ہمارا استقبال کرتے ہیں, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک قبر میں دیکھنا ہے. تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں, میں نے اللہ کا کتنا کام کیا ہے, اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے. اے ایمان والوں, تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والوں, تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. میں کتنا مددگار بن سکتا ہوں اور میں کتنا مددگار بناؤں, میں کسی کو نہیں کہہ سکتا, اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں. اس جان کو بچا کر کیا کریں گے, یہ جان قبر میں کیڑے کھا جائیں گے, اس کو بچا کر کیا کریں گے, اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی, اس کو کیڑے کھا جائیں گے. یہ اللہ کو پسند آ جائے یہ جان میری, اور یہ مال اگر میں نے اہل کلمۃ اللہ کے لیے لگایا تو یہ میرے اللہ کے ساتھ سودا ہو رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے مان سکتم من شیء فهو یخلفه. اے لوگوں, اگر تمہارا مال لگ رہا ہے تو یاد رکھو جو لگا ہے اس سے بہتر لوٹا کر واپس دوں گا, بہتر دوں گا. آپ اپنا خود یہاں کا جائزہ لیں, کیا 50 سال پہلے یہ خوشحالی تھی؟ بتاؤ میں کس کے رونے دھونے نے یہ خوشحالی کر دی ہے؟ اللہ اس سے دگنا چگنا خوشحالی لائے گا, اور وہ دینداری کے ساتھ آئے گی. تو ہم مال لگانے کو, ہم مال لگانے سے نہ خوف کریں, جانوں کے لگانے سے نہ خوف کریں. یہ جان اللہ کے نسبت پر لگے گی, اس کو اللہ طاقت دیں گے, اللہ کے نسبت پر لگنے میں اللہ طاقت دیں گے. ہاں, اور ہماری آخرت بنے گی. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے, اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو کسی درجے میں پورے کرنے والوں میں شمار ہوتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے اچھی امیدیں, جب ان فکروں پر جینا ہوگا تو انشاءاللہ پھر مرنا بھی اچھا ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ جیسا تم جیو گے ایسے ہی تم مرو گے. کما تحیون تموتون. اے لوگوں, تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے, اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں حاضری ہو جائے گی. انصار صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے دنیا سے جانے کے بعد انصار کون ہے؟ انصار وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے خود لگے, گھر والیوں کو لگایا, بچے کو لگایا, اور گھر میں جھاڑو لگ گئی. حضور کی مسجد میں فاقے آ گئے, فاقے مدینے کے ایک گھر میں فاقے آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے بعد تم کو لوگ وہ بھاؤ نہیں دیں گے, تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جس کا تم حق رکھتے ہو, تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا, اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم تلوار نکالیں گے اور تلوار سے اپنا حق لیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایسا نہ کرنا, حوض کوثر پر آ کر تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لینا. یہ نصرت کرنے والوں کو تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پر بدلہ دیں گے. ہماری سعادت بننی ہے ہم اللہ کے دین کی نصرت میں لگ جائیں, ورنہ جان بھی لگنے والی چیز ہے اور مال بھی لگنے والی چیز ہے. اگر لگنے کی جگہ لگ گئی تو انشاءاللہ نہ لگنے کی جگہ سے اللہ بچا لے گا. آپ حضرات میں سبھی نے کام کیا ہے, لیکن جو کام باقی ہے اس کی ہم فکر کریں. جو چیز ہو چکی ہے اس کی حفاظت کی فکر کرنی ہے, جو ہونا باقی ہے اس کے ماحول بنانے کی فکر کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے دینی وہ ہوتے ہوتے اوروں کو لپیٹ میں لیں اور اس کے بعد ہمارا اور آپ کا گھر بھی نہ بچ پائے. اس لیے نیت کرو, ارادے کرو کہ اس اجتماع میں شرکت کو خالی ایک رواجی چیز نہیں بنائیں گے, بلکہ اب تک میں اپنے جینے میں جو سستی کر رہا ہوں میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں, اس کے باوجود بھی میں نے نہیں کی. میں اللہ سے معافی مانگوں. کل یہ مولانا نے پوچھا کرلاری میں, کیا اتنا بڑا علاقہ کیا ایک کوئی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہو؟ ہمارے ضلعوں میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ہوگی, لیکن ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ضلع میں بھی کیا کوئی بستی ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں 100% نمازی نہ ہو. ایک بستی بھی اگر 100% نمازی نہیں ہے تو تعجب کی چیز ہے. تعجب تو اس وقت ہوا جبکہ ایک بستی نے نہیں بتایا کہ یہاں 100% نمازی ہے. ہمارے جیتے جی ایک بستی ہم نہیں بتا سکتے 100% نماز والی. ہم सब अल्लाह से डरे हैं, अपने आप को अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह अपना काम किसी न किसी से ले लेगा, अल्लाह मुझसे और आपसे ले ले, मेरा और आपका इस्तेमाल हो जाए, ये मेरी सआदत की चीज है, बहुत बड़ा तोशा हो जाएगा, लोग हमें भूल जाएंगे, लेकिन हमारे जोर से जो खैर चलेगी उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई उसको भुला नहीं सकता, वो उनके बगैर बख्शिश किए और बगैर हिसाब सवाब किए वो खैर इंशाल्लाह हमारे खाते में आएगी। इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह अब तक जो सुस्ती हुई है आज से उस सुस्ती से अल्लाह से तौबा करेंगे और आज से इंशाल्लाह जो कर सकते हैं उसमें कमी नहीं करेंगे। भाई सब नियत करते रहो, कौन कौन नियत कर पाए। इसलिए एक तो गुजारिश है, एक सब नियत करो कि हमारा सालाना वक्त हमारे ईमान की हिफाजत के लिए हम इंशाल्लाह एहतमाम से हर हर साल लगाएंगे। कौन कौन हर साल पाबंदी से लगाएगा। दूसरा ये तय कर लो कि मैं अपने महाना 3 दिन एहतमाम से, 27 दिन की गफलत का क्या हमें ये एहसास नहीं है। भाई सुबह में खाना नहीं खाया तो शाम को थोड़ी ताकत रहती है और शाम को न खाओ तो दूसरे दिन आदमी ऊंधा पड़ जाता है। मैं 1 महीने तक उस गफलत के माहौल में रहूं, 1-3 दिन चला जाऊं, वो 3 दिन में अल्लाह ने ताकत रखी है, वो मुझे ताकत पहुंचाएगी। हमारे महाना 3 दिन में छूटे। फिर उसके अलावा रोजाना अपने आप को मशवरे के साथ जोड़ दें, मशवरे में रोजाना ताजगी होती रहेगी, चार्जिंग होता रहेगा और फिर इसी तरह को लेकर रोजाना मोहल्ले में फिरें, हमारा इस्तेमाल होगा और पूरे मोहल्ले में वायरिंग हो जाएगा। वायरिंग हजरत मौलाना इस रहमतुल्लाह का एक बयान पढ़ रहा था, उसमें हजरत ने फरमाया तुम सब जगह वायरिंग कर दो, वायरिंग जब अल्लाह उसको पावर हाउस से जोड़ेगा तो सारा इलाका जगमगा उठेगा। वायरिंग हो जाना चाहिए। वायरिंग खेती वाले नालियां बना देते हैं खेत में, फिर ट्यूबवेल से एक जगह पानी निकलता है, नालियां बनी हुई है, सब जगह पानी पहुंच जाता है। ऐसे आप वायरिंग कर दोगे जब अल्लाह की तरफ से हिदायत की हवा चलेगी, इंशाल्लाह अल्लाह उमूम हिदायत के फैसले करेंगे। इसलिए सब तय करो कि एक घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जिस पर हमारे मुलाकात के लिए जाना न हो। जाओगे मुलाकातों में, सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम भी इंसानों को कमा कर जाएंगे। अरे बोलो किसको कमा कर जाना है, कौन कौन कमा कर जाएगा। उसके लिए कष्टों में जुड़ेंगे, उसके लिए रोजाना घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाएंगे। लगाओगे भाई, कौन कौन लगाएगा। रोजाना अपने मस्जिद को वक्त देंगे और दूसरे गश्त के जरिए से अपने अतराफ के मोहल्लों को और 3 दिन के जरिए से अपने देहातों को इंशाल्लाह मेहनत करके कवर करने की फिक्र करेंगे। आइंदा साल अल्लाह करे ऐसे कारोबारी हो कि हमारे अतराफ का एक भी देहात बंजर न बचाओ। बाकी मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ आज की सुबह की जोनों की कारदारी सुनकर, जो हजरत थे उनसे पूछना 50 में उससे ज्यादा टोटल देहात ऐसे होंगे हमारे इस जिले में जहां मुसलमान बसता है और वहां बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, अल्लाह का नाम सिखाने वाला कोई नहीं। क्या कोई सोच सकता है हम इस हाल में यहां जिए और इस हाल में दुनिया से चले जाए। इसलिए नियत करो कि आज इंशाल्लाह आज एक नई नियत के साथ आइंदा साल तक मेहनत करनी है। भाई सब नियत करते हो, अल्लाह तौफीक दे कबूल फरमाए। इसलिए गुजारिश है एक आदमी भी अपनी जगह से खड़ा ना हो, एक आदमी भी खड़ा ना हो, खैर के काम में ताउन करो।